नास्तिक सूर्य के कानों के पास झुका हुआ था और अपनी सरगोशी भरी और खतरनाक आवाज में कहता है, कह देना उससे जो तेरे पीछे है और इन सब खेल का मास्टरमाइंड है, कि आस्तिक रायचंद खेल में उतर चुका है। अब तक तो मैं ये सोचकर तुम्हें छोड़ना आया था कि बच्चों से क्या उलझना, लेकिन जो बच्चे शरारत अपनी औकात से ज्यादा करने लगते हैं ना, तो बाप को बाप बनना ही पड़ता है। पर तभी सूर्य भी आस्तिक की तरफ अपना चेहरा हल्का सा घुमाते हुए हंसने लगता है। वो आस्तिक को देख रहा था और उसे हंसता देख आस्तिक हैरान हो गया। मरने की हालत में भी ये इंसान हंस रहा है, वो यही सोच रहा था। पर सूर्य ने हंसते हुए उसे देखा और अपनी सड़ी हुई आवाज में कहा, तो तुम मुझे सबक सिखाने की कोशिश कर रहे, अच्छा है करो, कोशिश करने में क्या ही जाता है। और तुमने सही पहचाना, मैं इस खेल में अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे किसी बहुत बड़े और खतरनाक इंसान का हाथ है। उस इंसान का एक ही मकसद है, तुम्हारी बर्बादी, तुम्हारी तबाही, या यूं कहूं तुम्हारी मौत। और सिर्फ तुम्हारी मौत नहीं, बल्कि तुम्हारी उस प्यारी सी बीवी की भी मौत। भूल गए तुम्हारी बीवी की किडनैपिंग? जैसे ही सूर्य ने यह कहा, आस्तिक ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे छिंझोड़ते हुए कहा, कमीने, लगता है आज तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। मिस्टर मल्होत्रा कुछ करते उससे पहले नीरज वहां जाकर उन्हें रोक देता है, लेकिन आस्तिक और सूर्य अभी भी एक दूसरे से उलझ रहे थे। सूर्य ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो, शौक से मार दो, लेकिन सबसे पहले उसे तो बचा लो। आस्तिक की निगाहें छोटी हो जाती हैं और वो घूर कर सूर्य को देखने लगता है। सूर्य हंसते हुए बोला, तुम्हारे उस तक पहुंचने तक क्या वो जिंदा रहेगी, तुम्हारी प्यारी अरुणिमा? कहीं पता चले कि अगली कॉल पर तुम्हें उसकी मौत की खबर मिल रही है। साले, मेरी बीवी का नाम लेता है, आस्तिक ने गुस्से में सूर्य का गला दबाते हुए कहा। तो सूर्य जोरों से हंसते हुए बोला, मुझ पर अपना समय बर्बाद करने से बेहतर ये है कि अपनी बीवी के पास जाओ, क्या पता मेरे शब्द मेरे मुंह से निकलने से पहले ही पूरे हो चुके हों। जैसे ही उसने अरुणिमा के बारे में ये कहा, आस्तिक एकदम से घबरा जाता है। वो सूर्य को छोड़ देता है, लेकिन जो उसने सूर्य की हालत की थी, सूर्य लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया था। आस्तिक तेज कदमों से उस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलता है। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और अपनी सिक्योरिटी टीम को फोन कर लिया। वो अरुणिमा के बारे में जानना चाहता था। उसका शरीर कांपने लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो रही हो। आंखों के सामने एक अजीब सा खौफ आ गया था। वो बिना पल के झपकाए तेजी से भागता हुआ लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था और उसके पीछे नीरज था। शेर, अरुणिमा कहाँ है? आस्तिक तेजी से सांस लेता हुआ सिक्योरिटी टीम शेर से ये पूछता है, लेकिन सामने से जो शेर ने कहा वो सुनकर आस्तिक की आंखें एकदम फटी की फटी रह गईं और उसके हाथ की उंगलियां तक कांप गई थीं। वो गुस्से में चिल्लाने लगा, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बाहर भेजने की? अगर मेरी अरुणिमा को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। आस्तिक लिफ्ट के सामने खड़ा होकर चिल्ला रहा था। लिफ्ट आने में टाइम थी और अब तक नीरज भी वहां आ गया था, लेकिन आस्तिक ने लिफ्ट का वेट नहीं किया और वो तेजी से सीढ़ियों से उतरने लगा। नीरज भी उसके पीछे पीछे आ गया और उसने जल्दी से आस्तिक की जेड प्लस सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, सबके सब आस्तिक के पास लोकेशन पर आ जाओ। आस्तिक बदहवास हो गया था, 17वीं मंजिल तक नीचे लिफ्ट से आया था। वो बुरी तरह से हांफ रहा था, उसके पैर कांप रहे थे और चेहरा पूरा हताशा से भर गया था, लेकिन आस्तिक के कदम नहीं रुक रहे थे। उसके सामने एक ही चेहरा था, वो थी उसकी अरुणिमा। वो तेजी से दौड़ता हुआ गाड़ी की तरफ जाता है और जो उसका ड्राइवर और बॉडीगार्ड्स मौजूद थे, आस्तिक ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने ड्राइवर को तेज धक्का मारकर गाड़ी से दूर कर दिया और खुद गाड़ी ड्राइव करने लगा। वो तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा था। उसने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर 3-4 बार मुक्के मारे। नीरज दूसरी गाड़ी में आ रहा था और उसने सिक्योरिटी से कह दिया था कि आस्तिक की गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ जा रही है। आस्तिक की गाड़ी जैसे ही अस्पताल के सामने रुकती है, वो नो पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी करता है और दरवाजा खोलकर बिना गाड़ी का दरवाजा बंद किए भागते हुए अस्पताल के अंदर चला गया। उसने ठीक से सीढ़ियां तक नहीं देखी, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गया, पर उसे इस बात की परवाह नहीं थी। वो उठकर खड़ा होता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी उसी के पीछे थे। आस्तिक रिसेप्शन पर भागता हुआ गया और वहां पर अरुणिमा के बारे में पूछने लगा। अब तक सेरा वहां आ गया था और वो आस्तिक से कहता है, बॉस, मैडम ऑपरेशन थिएटर में है, उनका ऑपरेशन चल रहा है। आस्तिक तेजी से चलता हुआ सीढ़ियों की तरफ जाता है और भागता हुआ ऊपरी मंजिल की तरफ चढ़ने लगता है। उसने ना तो लिफ्ट का इंतजार किया और ना ही लिफ्ट के बारे में सोचा, वो बस अरुणिमा के बारे में सोच रहा था। ऐसा लग रहा था अस्पताल में सिर्फ आस्तिक के ही लोग हैं। बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी टीम अपने काम पर लग गई थी। उन्होंने पूरे अस्पताल को कवर कर लिया था और आस्तिक के पीछे जेड प्लस की सिक्योरिटी थी। आस्तिक जैसे ही ऑपरेशन थिएटर के सामने पहुंचता है, उसका दिल एकदम से रुक सा जाता है। उसकी आंखें पथरा हो गई थी और अपनी बदहवासी की हालत में वो उस दरवाजे को देख रहा था जिसके पीछे उसकी अरुणिमा थी। पर तभी दरवाजा खुलता है और एक डॉक्टर बाहर निकलता है जिसने सर्जिकल मास्क पहने हुआ था। उसने अपना मास्क निकाला और आस्तिक को देखा। डॉक्टर ने आस्तिक को पहचान लिया था और उसने अरुणिमा को भी पहचान लिया था। आस्तिक और अरुणिमा इस शहर के सबसे रईस परिवारों में से एक हैं। आस्तिक की सांस रुक रही थी, वो दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, मेरी वाइफ ठीक तो है ना? मिस्टर रायचंद, हिम्मत से काम लीजिए, आपकी वाइफ की हालत अभी भी गंभीर है, लेकिन हमने ऑपरेशन कर दिया है, पर जब तक वो होश में नहीं आती हैं, हम ठीक से कुछ कह नहीं सकते हैं। आस्तिक के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो दो कदम पीछे हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर ने कहा था उसके बाद तो आस्तिक अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। आई एम सॉरी मिस्टर रायचंद, हमने कोशिश की लेकिन हम बच्चे को बचा नहीं पाए। आस्तिक किसी मुर्दा लाश की तरह फर्श को देख रहा था, लेकिन जब उसके कानों में डॉक्टर ने बच्चा शब्द कहा तो वो एकदम से चौंक जाता है और अपना चेहरा उठाकर डॉक्टर को हैरानी से देखने लगता है। बच्चा? जी मिस्टर रायचंद, दरअसल बच्चा नहीं, बच्चे ट्विंस थे। मिसेज रायचंद 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, पर अफसोस जब तक उन्हें अस्पताल लाया गया उनका मिसकैरेज हो चुका था। और इसी के साथ आस्तिक के आसपास की सारी चीजें जैसे रुक सी गई थीं, की और अरुणिमा की शादी से लेकर क्रूज पर वो आखिरी रात जब वो दोनों इंटीमेट हुए थे। आस्तिक की आंखों के सामने वो सारे पल ऐसे घूमने लगे जैसे कि ये उसने अभी अभी जिया था।